Hare Krishna, this class on Srimad Bhagavad Gita given on chapter 2, shloka number 13, given in All India Institute of Medical Sciences, New Delhi on 9th August 2016 by myself, Prashant Mukund Das.
Dehino asminim yatha dehe Kaumaram yovanam jara तथा दे अंतर प्राप्ति धीरस्तत नामुयति देहिनो अस्मिनिम यथा देहे कौमराम यौवनम जरा तथा दे अंतर प्राप्ति धीरस्तत्र नामुयते।
इसका अनुवाद पढ़ेंगे सब लोग साथ में। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने इस एक श्लोक के ऊपर तकरीबन 10 से 12 बार प्रवचन दिया अलग अलग देशों में। भगवद गीता में कई श्लोक ऐसे हैं जो कि वैसे देखा जाए तो सभी श्लोक अपने आप में महान हैं, ज्ञान प्रदान करने वाले, वैराग प्रदान करने वाले हैं, लेकिन फिर भी कुछ श्लोक ऐसे हैं जिनको हमें गले की कंठी माला बना करके धारण करना चाहिए। रात दिन हमको एहसास दिलाते हैं कि एक्चुअली ये जगत है क्या। तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण, हम सभी भक्तों को याद होना चाहिए जो भी भगवद गीता को सीखना चाहते हैं और इस भगवद गीता के अनुसार अपना जीवन चलाना चाहते हैं। तो इसमें बताया गया देहिनो, देहिनो का मतलब है शरीरधारी, आस्मिनिम इसमें, यथा जिस प्रकार, देहे शरीर। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आप देहे का क्या मतलब जानते हैं, बोलते हैं ना मेरी देही में दर्द हो रहा है या फिर मेरे देह में दर्द हो रहा है, बोलते हैं ना। शरीर को क्या बोलते हैं? देह, है ना। लेकिन यहां पर दो शब्द आए हैं, एक देहे और एक देही, तो इन दोनों शब्दों में भेद है। लेकिन हम जब अपनी कैजुअल लैंग्वेज, रोजमर्रा की जिंदगी में जब वार्तालाप करते हैं तो इन शब्दों का गलत प्रयोग करते हैं। हम बोलते हैं मेरी देही में दर्द है, कोई बोलता है मेरे देह में दर्द है, है ना। तो देह और देही दोनों अलग अलग हैं। देही कौन है? तो बताया देही नो, देही है शरीरधारी आत्मा और देह है शरीर। तो ये दो चीजें अलग अलग है, एक देही और एक देह। तो देह है बॉडी और देही है सोल, आत्मा। इसकी गाड़ी जैसे है और गाड़ी का ड्राइवर, ये दोनों अलग अलग है, वैसे ही शरीर में देही और देह अलग अलग है। तो आप लोग कौन है, देह है या देही है?
देही।
कौन है?
देही।
पक्का? ठीक है। तो देही हम लोग हैं, आत्मा है हम लोग, देह नहीं है। अच्छा, ये जो देही है इसमें क्या कोई परिवर्तन होता है? देही में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? देह में होता है। तो किन परिवर्तन से जाता है देह, वो बताया गया है। किसमें जाता है? कौमरम, यौवनम, जरा और उसके बाद देह अंतर प्राप्ति। देह अंतर मतलब दूसरी बॉडी में, देह अभी हमने पढ़ा देह मतलब शरीर। तो कौमरम, कौमरम मतलब युवा बच्चे वाली अवस्था, बाल अवस्था, कौमरम बोलते ना, कौंवर अवस्था का बच्चा है कौमरम। और उसके बाद दूसरा यौवनम, यौवनम का अर्थ है यौवन मतलब 18 साल से और बूढ़े होने तक 60 साल तक का जो जीवन है वो क्या हो गया, यौवनम। वैसे तो 60 साल का आदमी यौवन नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी बुढ़ापा अगर जल्दी आ जाए तो आजकल तो 35-40 पे भी बुढ़ा होता है व्यक्ति। लेकिन तीन अवस्था में जाता जरूर है हमारा शरीर। पहले बाल अवस्था 18 साल से पहले पहले, तो उसे कहेंगे कौमरम, फिर यौवनम, फिर जरा। जरा मतलब होता है बुढ़ापा, जरा मतलब संस्कृत में बुढ़ापा। तो अगर हम बोले जर आयु मतलब बुढ़ापे की आयु, तो जरा मतलब बुढ़ापा। तो हर व्यक्ति को आता है कि नहीं आता है, सबको आता है। और इन तीन स्टेजेस में से जाता ही जाता है, इन तीन प्रकार की स्टेजेस में। और चौथी स्टेज कौन सी है, चौथी सीढ़ी देह अंतर प्राप्ति। और ये जो देही है आत्मा, इन तीन सीढ़ियों से जाने के बाद चौथी सीढ़ी शरीर परिवर्तन में चले जाती है। लेकिन उसके बाद भगवान क्या कहते हैं, धीरस तत्र ना मोहयति। मोहयति मतलब मोहित नहीं होता, धीर पुरुष। धीर पुरुष मतलब, धीर का मतलब हमने कई बार चर्चा किया है, फिर भी धीर का मतलब है वो व्यक्ति जो प्रोवोकिंग सिचुएशंस, विपरीत परिस्थितियां में अपने को समान स्तर पर रख सके। हर्ष की स्थिति में ज्यादा हर्षित ना हो, दुख की स्थिति में ज्यादा दुखी ना हो। तो इस तरह से जो व्यक्ति सम न्यूट्रल बना रहता है वो व्यक्ति क्या है, धीर है। और जो धीर होता है सही मायने में वो मृत्यु से मोहित नहीं होता। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक के अंदर यही प्रवचन दे रहे हैं कि किस बारे में तुम इतने दुखी हो, जिनको तुम मारने वाले हो वो एक ना एक समय दूसरी देहांतर प्राप्ति कर ही लेंगे, या तो तुम्हारे जरिए या फिर अपनी नेचुरल डेथ से। तो तुम क्षत्रिय होने के नाते अपना कर्तव्य निभाओ और मेरे कहे अनुसार, मेरी आज्ञा अनुसार इनको मारो। तो इस तरह से भगवान ने वहां पर अर्जुन को इस प्रकार का उपदेश दिया। तो अब यहां पर प्रश्न उठ सकता है कि शरीर परिवर्तन होने पर दुख तो होना चाहिए, होना चाहिए हाँ या ना? हाँ जी, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जिस प्रकार से वस्त्र परिवर्तन होने पर हम दुखी नहीं होते हैं, ऐसे ही शरीर परिवर्तन होने पर, देह परिवर्तन होने पर हमें दुखी नहीं होना चाहिए। आप देखिए, जब आपका शरीर पुराना हो जाता है तो उसके बाद उसको नया शरीर मिलता है तो अच्छी बात है, है ना? किसी व्यक्ति का बूढ़ा शरीर हो, चला नहीं जाता, बेड के ऊपर ही वो स्टूल पास करता है, यूरिन पास करता है, ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति जो है वो खुश होगा। और उसको व्यक्ति प्रार्थना भी करता है, भगवान कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दो कि क्या हो जाए, इनका शरीर छूट जाए। और उस शरीर के बाद क्या मिलने वाला है, दूसरा शरीर। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में भक्ति करता है तो उस व्यक्ति को शरीर परिवर्तन हो ना हो उसको कोई बात का फर्क नहीं पड़ता। और अगर शरीर परिवर्तन होता भी है तो सच्चाई ये है, शरीर परिवर्तन होने के बाद में उस भक्त को वापस दूसरे शरीर में नहीं आना पड़ता। भगवान कहते हैं कि उस व्यक्ति को पुनर्जन्म नहीं होता। जन्म करम चमे दिव्यम एवं योवेति तत्पुतः त्याक्तम देहम पुनर्जन्मम नेति ममेति सुअर्जुनः। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म को समझ जाएगा वो अपना शरीर त्यागने के बाद पुनः इस शरीर चक्र में नहीं आएगा। लेकिन अभी जो सामने है दुर्योधन और जितने भी धृतराष्ट्र, जितने भी लोग खड़े हैं, वो सारे के सारे भगवत धाम जाने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में कृष्ण से प्रेम नहीं किया, उन्होंने क्या किया, कृष्ण से द्वेष किया। श्रील प्रभुपाद जी महाराज बोलते थे कि अगर देखा जाए तो हम सब भी दुर्योधन की कैटेगरी में है, क्योंकि हम लोग भगवान को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग 5% मानते हैं, कुछ लोग 15% मानते हैं, कुछ लोग 50% मानते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्याजम मामेकम शरणम व्रजह, सब कुछ त्याग कर 100% 100% मेरी शरण में जो आएगा उसके साथ मैं क्या करता हूं, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, उसको मैं मोक्ष प्रदान करता हूं, उसके सारे पापों को मैं समाप्त करता हूं। और जब पाप समाप्त हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, अंतगतम, सारे के सारे जितने भी पाप समाप्त हो जाएंगे, अंत हो जाएगा, अंतगतम तु फलम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, और उसके पुण्य अर्जित हो जाएंगे। और द्वंद मोहम निर्मुक्तम, द्वंद और मोह से निर्मुक्त हो जाएगा, फिर क्या करेगा, भजते माम दृढ़व्रताम, दृढ़व्रत होकर मेरा भजन करेगा। सारे पाप समाप्त कब होंगे, शरण में जाने से, शरण में जाएंगे 100% तब, अभी तो हम शरण में ही नहीं गए 100%। कुछ लोग बोलते हैं भगवान निराकार है, कुछ लोग बोलते हैं भगवान साकार है, कुछ लोग बोलते हैं भगवान निराकार है लेकिन ध्यान लगाने के लिए कोई प्रतिमा चाहिए तो कृष्ण की प्रतिमा उत्तम प्रतिमा है तो मूर्ति बना ली। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान तो विशाल ज्योति स्वरूपा है। ऐसी बातें जो करते हैं उन लोगों ने अभी क्या किया, भगवान को समझना ही नहीं शुरू किया है। जैसे कोई पिता हो और उसका पुत्र बोले, पूछा जाए आपके पिताजी कैसे दिखते हैं, कहा मेरे पिताजी जो घर में आते हैं वो तो खाली कहने के लिए है, ध्यान लगाने के लिए, असली पिता तो मेरे दिखते ही नहीं है, निराकार बड़े पिताजी है मेरे। तो आदमी कहेगा बड़ा पागल है, पिता तो वही है जिससे तू उत्पन्न हुआ है। तो भगवान ने गीता में कहा कि ये सारे के सारे जितनी भी प्रजातियां हैं, अहम बीज पदा पिता सर्व योनिष कौंतेय, हे कुंती पुत्र जितनी योनियां हैं उन सबका पिता मैं हूं, अहम बीज पदा पिता, बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। तो फिर अब डाउट कहां रह गया कि मेरा पिता निरंकार है, अहंकार है, साकार है, कैसा है मेरा पिता। मेरा पिता सिर्फ एक चीज है, श्रील प्रभुपाद बोलते थे श्री भगवान उवाच की जगह पर कृष्ण बोल रहे हैं, इसका मतलब कृष्ण मतलब भगवान, भगवान मतलब कृष्ण, ना कोई दुर्गा जी, ना कोई गणेश जी, ना कोई साई बाबा, ना कोई गुरु जी, वो सभी भगवान के सेवक हैं। इकला प्रभु कृष्णा आर सब भ्रत, बाकी सब उनके दास हैं। इसका मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि देवी देवताओं का अनादर करें, लेकिन वो भगवान नहीं है, भगवान मतलब कृष्ण, कृष्ण मतलब भगवान। इस बात को अपने हृदय में पूर्ण रूपेण जो स्थापित करेगा उसे कहा जाएगा सर्वधर्मान परित्याजम मामेकम शरणम व्रजह, पर उसने अपना पूरा पूरा अधिपत्य जमा लिया। हाँ जी मैंने मान लिया है कृष्ण तुमसे बढ़कर और कुछ नहीं है, भगवान मतलब कृष्ण, कृष्ण मतलब भगवान। तो यहां पर भगवद गीता के 10वें अध्याय में एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं अथवा बहुना एतेना किम ज्ञातेन तव अर्जुनः वृष्टभ्य अहम इदम कृष्णम एक अंशेन स्थितः जगतः। उसमें भगवान कहते हैं 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में, अथवा बहुनेन एतेना किम ज्ञातेन तव अर्जुनः, हे अर्जुन बहुत ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहा, वृष्टभ्य अहम इदम कृष्णम, कृष्णम मतलब संपूर्ण जगत, जितनी भी ये सृष्टियां हैं, जितने भी ब्रह्मांड हैं, और जितना तुम देख पाते हो वो क्या है मेरी शक्ति का, एक अंशेन स्थित, एक अंशेन एक चौथाई, एक अंशेन जो हमें दिखाई देता है ना भौतिक जगत, साइंटिस्ट लगे हैं मिल्की वे गैलेक्सी, दिस गैलेक्सी, दैट गैलेक्सी, बिग बैंग थ्योरी, दिस थ्योरी, दैट थ्योरी, शिला प्रभुपाद जी कहते थे ऑल बोगस, सब बकवास है। आदमी बोलेगा कैसे बकवास बोल दिया जी आपने, हमने 10वीं में उसकी पढ़ाई कर 99% मार्क्स लिए थे, उसके कारण 12th में गए, फिर मेडिकल पढ़ा 95% आए, फिर एम्स में आए डॉक्टर बने, तो आपने कैसे बकवास बोल दिया। बकवास ऐसे है कि अगर आपके पास कॉमन सेंस है, सामान्य बुद्धि, तो आप दिमाग लगाइए कि कभी किसी चीज के ब्लास्ट हो जाने से, बिग बैंग थ्योरी का मतलब है, 10वीं क्लास में पढ़ाते हैं कि एक बहुत जोर का धमाका हुआ और सृष्टि की रचना हो गई, अगर धमाका होने से सृष्टि की रचना हो सकती है तो ये यहाँ पर अभी हमारा जो गैस प्लांट है इसका पेंट उतर गया है, यहाँ पर रंग रोगन की आवश्यकता है, बैठने के लिए अच्छा फर्श नहीं है, तो एक काम करते हैं, हम सभी लोग मिलकर के एक बम बनाते हैं और बम ब्लास्ट करते हैं। तो बम ब्लास्ट करने से गैस प्लांट कैसा हो जाएगा? ओ सुंदर निर्माण हो जाएगा, एक विशाल मंदिर का यहाँ पे हो जाएगा ना, सही बात है। अरे अभी मना कर रहे हैं, दसवीं में तो 90% आप ही लेके आए थे। तो ये बात बकवास है, बोगस थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी नहीं, बोगस थ्योरी। बोगस थ्योरी इसीलिए है, इसका अर्थ ये हो गया कि एक डस्टबिन का डब्बा लीजिए, उसके अंदर शाही अक्षर डाल दीजिए और एक बॉम्ब बनाकर उसके अंदर डाल दो डब्बे के अंदर, और बॉम्ब को कर दो ठाक ब्लास्ट, और डब्बा खुलने के बाद अंदर से क्या निकला? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, छपी छपाई, लिखी लिखाई। होगा कभी पन्ने कहीं उड़ जाएंगे, अक्षर कहीं उड़ जाएंगे, डब्बा कहीं उड़ जाएगा, शाही कहीं उड़ जाएगी। तो फिर हम इस तरह की उल जलूल बातें पढ़ते चले आ रहे हैं, क्योंकि हमने असली शास्त्र ज्ञान को नहीं पढ़ा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इंडियन मैजिस्ट्रेट थे ब्रिटिश रूल में, ही वॉज नॉट फूल, मैजिस्ट्रेट इंडिया के, हम में से कोई मैजिस्ट्रेट नहीं है। आप पढ़ सकते हैं जाकर गूगल सर्च करके, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर फर्स्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ इंडिया इन ब्रिटिश कंट्री, ब्रिटिश रूल। उन्होंने क्या बोला इंडिया में, जड़ेर विद्या मायार वैभव, जो हम पढ़ते हैं ये सब माया है, छल है, असली पढ़ाई नहीं। असली शास्त्र क्या है? वेदस्य सर्वम अहम एव वेद्यो, वेद पढ़ने योग्य है। और उस वेद में भी क्या है? वेदस्य सर्वम अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदावत अहम, वेदों को लिखने वाला मैं हूं, वेदों के अंदर समझने योग्य मैं हूं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, लोग तो पता नहीं क्या वेद पढ़कर नए नए धर्म बनाए चले जा रहे हैं, निर्विशेष निराकार शून्यवाद। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी गए और उन सारी धारणाओं को समाप्त कर दिया, सबको समाप्त कर दिया था। आप देखिए एक चौथाई जगत है जो हमें दिखाई देता है, सुनाई देता है, जिसके बारे हम थोड़ा थोड़ा समझ पाए हैं, और तीन चौथाई जगत तो अभी दिखाई नहीं देता, उसके बारे में जानते ही नहीं है। और हम सब कौन है? हमने जाना कि हम सब कौन है, देही है कि देहे है? देही है। तो ये जो देही है ये किसका अंश है? भगवान का। तो भगवान कैसे हैं? सचिदानंद है, और हम भी कैसे हैं? सचिदानंद है। लेकिन हो क्या गया है, जब से इस दुखाले संसार में आए हैं हमें ऐसा लगने लगा है हम असत हैं, अचित हैं और निरानंद हैं। सत का मतलब होता है जो चीजें सदा विराजमान रहती हैं। तो भगवान सदा रहते हैं, उनका धाम सदा रहता है और उनके अंश भी सदा रहते हैं। हम लोग भी सदा रहने वाले हैं, हम में से कोई कभी नहीं मरेगा, ये बात फाइनल है, डिसाइडेड। लेकिन इसको समझना पड़ेगा कैसे। हम सब सत हैं और भगवान भी सत है। भगवान चित है, चित का मतलब होता है सर्व ज्ञाता, सबके हृदय में क्या क्या चल रहा है जानते हैं। बोलते हैं ना, अजी यार कुछ भी कर ले, ये मेरे साथ कितना भी बुरा कर ले, भगवान तो जानने वाला है, बोलते हैं ना। तो इसका मतलब भगवान सबके बारे में जानता है, इसलिए वो चित है, और हम लोग नहीं जानते हैं इसलिए हम अचित है। लेकिन जिस दिन हम आत्मा के रूप में अपने को जानने लगेंगे, हम भी चित बन जाएंगे, क्योंकि है ही चित, बनने की क्या आवश्यकता है। और भगवान कैसे हैं? सचित आनंद, सदा आनंद में रहते हैं। अभी जन्माष्टमी आने वाली है 25 अगस्त को, सारे लोग गाना गाएंगे क्या, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आपने कभी सोचा कि भगवान का जन्म जो होता है उसका नाम अष्टमी क्यों नहीं देते? जन्म अष्टमी, अष्टमी, बाकी आती है रामनवमी, तो इसको कृष्ण अष्टमी बोलना चाहिए। कभी बोलते हैं कृष्ण अष्टमी, सीता नवमी बोलते हैं, लेकिन कभी बोलते हैं कृष्ण अष्टमी, राधा अष्टमी बोलते हैं, लेकिन कभी बोलते हैं कृष्ण अष्टमी, शिव रात्रि बोलते हैं, कभी बोलते हैं कृष्ण रात्रि, क्यों नहीं कहते? इसका नाम क्या रखा? जन्म अष्टमी। इसका मतलब है संपूर्ण ब्रह्मांड के ब्रह्मांड नायक, द लीडर ऑफ द यूनिवर्स इज कमिंग। जब मालिक स्वयं आता है तो उनका पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड वो उत्सव मनाता है, इसलिए उसको कृष्ण अष्टमी नहीं जन्म अष्टमी कहते हैं, समझे। और जब भगवान आते हैं तो ये नहीं कहा जाता कृष्ण नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की, ऐसे कहते हैं, क्या कहते हैं? नंद घर आनंद भयो। इसका मतलब आनंद का पर्यावाची, सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड ब्लिसफुल, आनंद का पर्यावाची शब्द क्या है? कृष्ण। जिस प्रकार से मिठाई के गुड्डे गुड़िया बनाए जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं दीपावली के ऊपर, उसमें अगर कोई हाथी हो चीनी का बना हुआ, उसकी सूंड तोड़ो तो क्या निकलेगी? चीनी। पैर तोड़ो तो क्या निकलेगी? चीनी। ऐसे ही कृष्ण के पांव को छुओ तो आनंद, सर को छुओ तो आनंद, नाम को छुओ तो आनंद, ग्रंथ को छुओ तो आनंद, प्रसाद को छुओ तो आनंद, कथा को सुनो तो आनंद। इसका मतलब कृष्ण आनंद ही है। और कोई संसार में देवी देवता, कोई गुरु, कोई इंसान, कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर ये नहीं कह सकता आई एम कंप्लीट आनंद। नाम रख सकता है अपना आनंद, लेकिन वो आनंद नहीं है। अगर वो खुद आनंद नाम रखने से आनंद में हो तो बेचारे को बुखार ही नहीं आना चाहिए, लेकिन आता है। इसका मतलब वो निरानंद है। और ऐसे सच्चित आनंद हम सब हमेशा दुखी रहते हैं। सच्चित दुखी, सच्चित निरानंद। क्यों? क्योंकि हम अपने को देही ना मान करके क्या मानते हैं? देहे मानते हैं। तो आप सोचिए कि अगर हम भगवान के अंश हैं, भगवान सच्चित आनंद है, तो हमें इस संसार में क्या चाहिए? भगवान का साथ, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन। और वो नहीं मिलता इसलिए हम निरानंद हो जाते हैं। मान लीजिए, ज्योग्राफी पढ़ी है आप लोगों ने? ज्योग्राफी कितने लोगों ने पढ़ी है? ज्योग्राफी सबने पढ़ी है, कुछ लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी के अंदर भूगोल, पृथ्वी के बारे में, इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में बताया गया। द अर्थ प्लैनेट, पृथ्वी जो है, इसका एक चौथाई भाग पानी पृथ्वी है और तीन चौथाई भाग जल है। तो इसका मतलब 75% जल, 25% लैंड एरिया पृथ्वी है। तो अब आप जरा ध्यान लगाइए कि उसी प्रकार से हमारे ब्रह्मांड की रचना भी है। तीन चौथाई आध्यात्मिक जगत, एक चौथाई भौतिक जगत। अभी तीन चौथाई जल में से, 75% समुद्र के जल में से एक मछली को निकालो और लाकर के एक चौथाई पृथ्वी पर रख दो और उसको बोलो सफदरजंग में तुम्हारे लिए एक फ्लैट बुक कराया है, ग्रीन पार्क में तुम्हारे लिए ऑफिस खोला है और एक बड़ी गाड़ी तुम्हारे लिए पार्किंग करा दी है बाहर, हाँ अब मछली खुश रहो, रहेगी? उसे क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो हम सब तीन चौथाई आध्यात्मिक जगत से आने वाले इस एक चौथाई जगत में फंस गए हैं। तो अब हमें क्या चाहिए? आध्यात्मिक जगत का रस चाहिए या इस भौतिक जगत का रस चाहिए? हाँ जी, आध्यात्मिक जगत का रस चाहिए। लेकिन हम सारा दिन एंगेज रहते हैं भौतिक जगत के रस में, अपने को मशगूल रखते हैं, कान में FM लगाते हैं, आंखों में TV चलाते हैं, मुंह से कुछ भी खा लेते हैं। तो इस तरह से जब हम चलेंगे, अपने जीवन को चलाएंगे, तो फिर वो मछली कभी संतुष्ट नहीं रहेगी। और इसीलिए हम सच्चित आनंद आत्मा होते हुए भी सत चित आनंद की जगह असत, अचित और निरानंद रहते हैं। बार बार यही डर रहता है मैं मर जाऊंगा, असत। जब हम सच्चित आनंद है तो हम मरेंगे कैसे? लेकिन डर लगता है। इसका मतलब अभी हम देही ना मानकर अपने को देहे मानते हैं। तो ये चीज समझने वाली है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और इसीलिए ये सारी दिक्कतें आती हैं। एक बार एक व्यक्ति था, वो एक भक्त से मिला और बोला, बाबा जी मैं भजन करना चाहता हूँ, किसका करूं? बाबा जी ने कहा, अगर भजन करना चाहते हो तो भजन करने योग्य तो एक ही भगवान है, देवकी पुत्र एकम, सिर्फ देवकी के पुत्र एक ही ऐसे भगवान है। भगवद गीता के शुरुआत में बताया गया, एको शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, पढ़ने योग्य एक ही शास्त्र है, देवकी के पुत्र की गीता। एको देवम, खाली एक ही देव है, कौन सा? देवकी पुत्र एवं, जो देवकी के पुत्र है वही भगवान पूजने योग्य है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अपने घर में ले आए और लाकर के भजन करने लगे, उनका आरती अगरबत्ती करने लगे। लेकिन ना शास्त्र जानते थे ना फिलॉसफी जानते थे। ऐसे अनेकों लोग मिलेंगे आपको सर्कल में, हमें बहुत मिलते हैं। लड्डू गोपाल जी को प्याज लहसुन का भोग लगाते हैं, बोले जी जो खाते हैं वो अपने भगवान को खिलाते हैं, वो जानते ही नहीं है भगवान क्या खाते हैं, क्या भजन करना चाहिए। भगवान के आगे बैठकर देवी के गाने गाते हैं, उन्हें पता ही नहीं है भगवान को कैसे भजना चाहिए। भगवान अपनी शक्ति के बिना कभी रहते नहीं है, राधा रानी को मानते नहीं है, लड्डू गोपाल को शिव जी के चरणों में बिठा रखा है। तो इस तरह की भ्रांत धारणाएं चलती हैं। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, जानता नहीं था कि भगवान का भजन किस तरह करना चाहिए। भगवान को भोग लगाया और रात्रि में क्या हुआ, चूहा भोग लेके भाग गया। फिर दूसरे दिन लगाया, फिर चूहा लेके भाग गया। अब ये अपनी समझ से भगवान को समझने का प्रयास कर रहा है। जैसे हम सब लोग भगवान को अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं। कैसे होंगे कृष्ण? अरे मुझे लगता है उस जमाने के लोग ना इतने बड़े बड़े होते, ऐसे होंगे कृष्ण। अरे 125 साल तक लीला करी, बहुत बुढ़े हो गए होंगे, सफेद बाल होंगे, उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, तो ये मसल होंगी बड़ी बड़ी उनकी, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। 16 साल के सुंदर नव यौवन बालक के जैसे ही थे 125 साल पर भी, उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि उनका शरीर सच्चित आनंद का बना हुआ है। तो ये चीज हम अपने दिमाग से लगाते हैं। उसने भी लगाया, बोला वो भगवान ही क्या जिसका भोग चूहा ले जाए। कल से जी चूहे की पूजा करूंगा। जय चूहे राजा, रोज भोग खाने आ जा। और चूहा आता खा जाता, वो बड़ा खुश। एक दिन घर में बिल्ली आई, उसने चूहे को खा लिया। कह रहे वो भगवान ही क्या जिसको बिल्ली खा जाए। तो बिल्ली भगवान हो गई। अब उसने बिल्ली की स्थापना कर दी और रोज अगरबत्ती, जय बिल्ली मैया, जय बिल्ली मैया। अब बहुत खुश रहने लगा। लेकिन फिर एक दिन देखा कि घर में एक कुत्ता घुस आया, और उस कुत्ते को देख के बिल्ली इधर उधर भाग रही है। कहा अरे कुत्ता बड़ा हो गया, तो इसका मतलब कुत्ता पूजने योग्य है। तो उसने कुत्ते को घर में रख लिया और बिल्ली को भगा दिया, और अब कुत्ते राजा की पूजा होने लगी, है ना? और फिर ऐसे ही एक दिन देखा कि उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया उस कुत्ते के ऊपर, और उसने कहा सच मायने में कुत्ता है, मेरी बात को मानता नहीं है, मेरी बात को मानता नहीं, और एक डंडा लेकर उस कुत्ते को मारा। मारा तो कुत्ता वहां से भाग गया। खैर ये कैसा भगवान जो कि और मेरी पत्नी के एक डंडे से भाग गया। तो उसको भी छोड़ दिया और कहा अब से मेरी भगवान कौन है, मेरी पत्नी। रोज पत्नी की पूजा करने लगा, आरती करने लगा, भोग लगाने लगा। कहा संत ने कहा था भगवान की पूजा करो, तो मैं तो भगवान की कर रहा हूं, लेकिन भगवान कौन है जो सबसे ताकतवर है? तो अब ताकत अपने दिमाग से लगा रहा है वो। तो एक दिन बात बात में बहस होते 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 क्या हुआ, उसने अपनी पत्नी को इतना डांटा, वो अपना सामान उठा के मायके चली गई। कहा ये भगवान कैसा जिसने मुझसे ही हार मान ली, इसका मतलब भगवान कौन है मैं। अपनी एक मूर्ति बनवाई, ऑल्टर में रखी घर के मंदिर में, और फिर रोज उसी की आरती करने लगा, अपने खुद की आरती। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं नर ही नारायण है, हम ही भगवान हैं जी, कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहाँ जाओ वहां जाओ, इतनी दूर दूर जाओ, ये दान वो दान ये सब नकली है, हम भगवान हमारे अंदर है, मैं ही भगवान हूं। तो ये वो ही है जो अपनी बुद्धि से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, इस चूहे राजा की कहानी की तरह। तो इसलिए हमें उनसे नहीं समझना है, अपने दिमाग से। किससे समझना है? शास्त्र चक्षुओं से समझना है। तो समझने का प्रयास करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बोला करते थे हम सब इस चीज को समझ इसलिए नहीं पा रहे, हमें बहुत मुश्किल होती है, हर मंगलवार को कथा सुननी पड़ती है, प्रभु जी आते हैं, हम सब अपना काम धंधा छोड़कर आते हैं, लंच टाइम को त्याग कर आते हैं, ओपीडी से भाग कर आते हैं, लेकिन हम समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, हृदय में उतर क्यों नहीं पा रहा है? तो प्रभुपाद जी कहते थे इसलिए नहीं उतरता क्योंकि हम सब बीमार हैं। क्या है? बीमार। जब व्यक्ति बीमार होता है ना, तो उस व्यक्ति को दो खाने के लिए, तो कहता है नहीं 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 नहीं, मुझे ना अच्छा नहीं फील हो रहा है, मैं कुछ खा नहीं सकता हूं अभी, है ना? बुखार आ जाए तो खाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। ऐसे ही भगवान के प्रेम करने की इच्छा, भगवान की कथा सुनने की इच्छा, भगवान के नाम लेने की इच्छा समाप्त हो गई है। किस कारण से? सिर्फ एक कारण से। क्या? क्योंकि हम सब बीमार हैं। लेकिन प्रभु जी प्रश्न ये उठता है कि अगर हम सब शुद्ध सच्चित आनंद आत्मा है, तो हम असत अचित निरानंद कैसे बन गए और हम बीमार कैसे हो गए? तो इसका उत्तर ये है कि जिस प्रकार से एक स्वस्थ व्यक्ति जब जन्म लेता है तो स्वस्थ होता है, हष्ट पुष्ट होता है, खाता है, खेलता है, बड़ा होता है, लेकिन धीरे 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 जैसे काम वो करता है, उन कामों से वो बीमारियां उत्पन्न करता है। जैसे अगर कोई शराब पी रहा है तो 99% केस में उसका लीवर खराब हो गई होगा। अगर कोई स्मोक कर रहा है बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो एक ना एक दिन उसके लंग्स खराब होंगे। कोई माशाअल्लाह बहुत पुण्य कर्म करके आया है तो बच भी सकता है, लेकिन 99% बीमार होना निश्चित है। तो भगवत गीता भी कहती है कारणम गुण संगवस्य सद असद योनि जन्मसु। जिन जिन गुणों का हम संग करेंगे वैसी वैसी योनियां हमें प्राप्त होंगी, वैसे वैसे दुख हमें मिलने वाले हैं। तो हमारे पास तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब आपको देखना है आप किसका संग करते हैं, जिनका संग करेंगे उसी के कारण हम अपवित्र हो जाते हैं, इम्प्योर हो जाते हैं, हमारी शुद्ध आत्मा एकदम बेकार हम कर लेते हैं। जैसे पानी की एक बूंद जब बरसात होती है तो शुद्ध होती है, जमीन में गिरते ही एकदम मठ मैली मिट्टी की कीचड़ बन जाती है। अभी कोई बोले ये तो कीचड़ है, अब वो बूंद बोलेगी अरे मैं कीचड़ थोड़ी हूं, मैं तो शुद्ध बूंद हूं जो आसमान से आई हूं। ऐसे हम सब शुद्ध हैं, लेकिन यहां के गुणों की कीचड़ में फंस के हम खुद कीचड़ बन गए हैं। तो अगर हमें इससे बचना है तो हमें अपने संघ को बदलना पड़ेगा। जैसे यहां हम लाते हैं, आप लोगों को लाना चाहिए, कहना चाहिए ये एक तरीका है तमोगुण और रजोगुण जीवन को त्याग करके सतोगुण में आना। तो अभी हम बीमारी को ठीक करना चाहते हैं कि नहीं? अगर बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो उसका तरीका है, जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर जी कहते हैं आपके एम्स के, ये चीजें करनी है, ये चीजें नहीं करनी है। तो ऐसे ही अगर हम इस बीमारी से निकलना चाहते हैं, अविद्या की बीमारी, उस बीमारी से निकलने के लिए चार काम करने हैं और चार काम नहीं करने हैं। चार काम क्या करने हैं? चार काम ये करने हैं, भक्तों का संग करना है, जैसे ये मंगलवार भक्तों का संग। दूसरा, शास्त्रों का अध्ययन, रोज गीता का एक श्लोक पढ़ना है, बस एक, ज्यादा नहीं। कहते हैं एप्पल अडे कीप्स डॉक्टर अवे, अश्लोका अडे गिव्स यमदूत अवे, यमदूत दूर चले जाएंगे आपसे। तो रोज एक श्लोक पढ़ें गीता का, कम से कम, ज्यादा पढ़ें बहुत अच्छा है। और तीसरा, भगवान के नामों का जप करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, रोज भगवान के नामों का जप करें। चौथा, भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, जब भी खाएं प्रसाद खाएं, अगर प्रसाद ना मिले तो तुलसी अपनी जेब में रखनी चाहिए, भगवान को मानसिक ऑफर करके तुलसी डाल करके खाएं, लहसुन प्याज ना खाएं, है ना, खाली वो खाएं सात्विक भोजन, तो आप सतो गुण में रहेंगे और जिन गुणों का संग करेंगे आप तुरंत स्वस्थ हो जाएंगे। किसी को दमा की बीमारी होती है तो डॉक्टर कहते हैं खुली हवा में जाओ, खुली हवा में जाओ, मतलब आप अपने एनवायरमेंट को चेंज करो। तो आप लोग जो फंसे हुए हो, भगवान को समझ नहीं पा रहे हो, अपने एनवायरमेंट को चेंज करो, अपने वातावरण को बदलो, सतो गुण में ज्यादा से ज्यादा रहने की कोशिश करो। मंदिरों में जाओ, इस्कॉन मंदिर दुनिया जहान में बना दिए, दिल्ली में 13 मंदिर है हमारे इस्कॉन के, ईस्ट ऑफ कैलाश जा सकते हैं, पंजाबी बाग जा सकते हैं, द्वारका जा सकते हैं, जहां चाहे वहां, और कहीं नहीं जा सकते तो अभी यहां मंगलवार को इस्कॉन केंद्र खुल गया है तो यहां आ सकते हैं, अपने लोगों को ला सकते हैं, तो ये बीमारी से आप दूर हो सकते हैं। और चार काम नहीं करने हैं, क्या? हमको मदिरा पान चाय कॉफी जैसी चीजों का सेवन नहीं करना, वरना कभी बीमारी ठीक होने वाली नहीं है, आपके हाथ में है ठीक होना या ना होना। किसी को डायबिटीज है, रोज शाम को मिठाई खाता है तो घर वाले कहते हैं पिताजी आपने तो मरना निश्चित कर लिया है, आपको डॉक्टर ने मना किया है डोंट टेक शुगर, मीठी चीजें नहीं लेना। ऐसे ही भक्ति करने वाले व्यक्ति को, कृष्ण कृपा पाने वाले व्यक्ति को, हरि नाम जपने वाले व्यक्ति को चाय कॉफी मदिरा पान नहीं करना, मांसाहार लहसुन प्याज नहीं खाना, जुआ आदि चीजें नहीं करनी, पर स्त्री पर पुरुष संग नहीं करना। ये नहीं काम ना करके और जो काम करने योग करने से हम तुरंत स्वस्थ हो सकते हैं। तो इसलिए इस हॉस्पिटल में एक और हॉस्पिटल खुला है, एम्स हॉस्पिटल में एक और हॉस्पिटल खुला है। एम्स हॉस्पिटल में भौतिक बीमारियां ठीक होती हैं, इस हॉस्पिटल में आध्यात्मिक बीमारियां ठीक होती हैं। तो इसलिए सत्संग में आना बहुत जरूरी है। शंकराचार्य कहते हैं सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्वोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वम जीवन मुक्ति, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। तो उसने वो कहते हैं सत्संगत्वे निसंगत्वम, अगर आप सत्संग में जाएंगे तो जीवन के अटैचमेंट निसंगत्वम छूट जाएंगे, सत्संग में जाना पड़ेगा। पहली चीज क्या है? सत्संगत्वम निसंगत्वे, छूट जाएगा सारा वो जो कुसंग है आपका, अपने आप छूट जाएगा। टीवी देखने का मन नहीं करेगा, खाना पीना बाहर खाने का मन नहीं करेगा। आप पूछिए इस्कॉन में कितने सारे भक्त हैं जो कि अभी जप करने लगे, आने लगे, नियम पालन करने लगे, उनको लहसुन प्याज की खुशबू आ जाए तो वो बदबू लगती है, तो सच्चाई वो बदबू ही है। लेकिन अभी हमें खुशबू लगती है, हाँ चाट पकौड़ी के ऊपर भर भर के डालते हैं, सोचते हैं बहुत टेस्टी है, लेकिन उसका कोई टेस्ट ही नहीं है, ऑर्डरलेस टेस्टलेस प्रोडक्ट है वो। तो सोचिए इस तरह। और निसंगत्वम, जब आपके ये अटैचमेंट छूट जाएंगे तो निर्मोह हत्वम, आपका क्या हो जाएगा, ये भ्रम जो है ना, भ्रम ये हट जाएगा। जैसे सपने में देखते हैं शेर खाने वाला उड़ गए, उड़ते ही शेर गायब, ऐसे ही लग रहा है हम मर जाएंगे, आत्मा समझने लगे, मृत्यु समाप्त। देहो आस्मिनिम यथा देह कौमरम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, मरना कहाँ है, कपड़े तो चेंज हो रहे हैं, सीढ़ियां बदल रही हैं, हम देही हैं, हमेशा रहने वाले हैं। तो ये हो जाएगा भ्रम समाप्त। और भ्रम समाप्त होने से क्या होगा, निर्वोहत्वम निश्चल तत्वम, ये तब हो पाएगा जब हम निश्चल तत्वम समझ जाएंगे कि हम सब कौन है, निश्चल तत्व है, निश्चल तत्व है आत्मा। निश्चल तत्व होने से क्या होगा, निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति, बस मुक्ति मिल गई। मुक्ति का मतलब ये नहीं मोक्ष की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पिताजी हमारी माताजी हमारे पति हमारे बच्चे मुक्त हो गए। कैसे मुक्त हो गए, शरीर छोड़कर चले गए, शरीर छोड़कर जाना मुक्ति नहीं है, दूसरा शरीर मिल गया ना, देहांतर प्राप्ति, अरे मुक्त कहाँ हुए, फिर बच्चा बन गए, फिर वही ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय, फिर नौकरी करो, फिर शादी करो, फिर बच्चे पालो, फिर बूढ़ा हुआ, फिर मर गया, फिर दोबारा किसी गर्भ में ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय। तो मुक्ति कहाँ है, मुक्ति तब है जिस दिन हम देही और देह को अलग कर ले। तो निश्चल तत्वम, जिस दिन निश्चल तत्व को समझ गए, जीवन मुक्ति, जीवन मुक्त हो जाएगा। शंकराचार्य कह रहे हैं, जो कि शिवजी की उपासना किए, पूरे ब्रह्मांड में शिवजी की विग्रह स्थापित किए शिवलिंग के, और अपने अंत काल में क्योंकि वो भगवान शिव के अवतार थे, उन्होंने कहा भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, मेरे मूर्ख शिष्यों भगवान कृष्ण का भजन करना, मैंने जो किया ये सब तो भगवान के आदेश से भ्रम फैलाने के लिए किया, ताकि लोग भ्रमित हों और जो सच्चे भक्त हों वो भगवान कृष्ण की शरण में जा सके, शंकराचार्य ने कहा। तो इस तरह से अपनी आत्मा को, जो आपका निश्चल तत्व है, इसे बेकार मत होने दीजिए, ये सचित आनंद तत्व है, कहीं ऐसा ना हो देहांतर प्राप्ति दूसरे देह में चले जाए। इससे पहले जब तक इस देह के अंदर है, इस देही को समझने का प्रयास करिए। एक आखिरी कथा समाज सुनाकर समाप्त करेंगे, समय हो गया है। उसमें कहते हैं कि एक बार एक साधु थे, और साधु एक राज्य में आए, होता ना महल, उस महल में आए, और उस महल में आकर उन्होंने मुलाकात करी राजा के पुत्र से। तो राजा के पुत्र ने कहा, महाराज जी साधु जी सन्यासी जी आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है आशीर्वाद देता हूं। और इतनी देर में उस राज्य के अंदर एक ब्राह्मण पुत्र भी आ गया, उसने कहा मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। और थोड़ी देर बाद वहां पर एक साधु आया जो कि भक्त था भगवान श्री कृष्ण का, हर वक्त निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता था। और चौथा वहां पर एक शिकारी आया जो रात दिन मांस मदिरा में ही लिप्त रहता था। तो अपने किसी कारणवश राजा से कुछ मांगने के लिए आया, तो वो भी राज्य में आ गया। अब चार लोग आ गए, कौन कौन, पहला राजा का पुत्र, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र, तीसरा एक भक्त साधु, और चौथा एक शिकारी। ये चार लोग आए और चारों ने उस सन्यासी से कहा हमें आशीर्वाद दीजिए। तो सन्यासी ने राजा पुत्र को क्या कहा, राजा पुत्र को कहा राजा पुत्रम चिरंजीवम, क्या कहा, राजा पुत्रम चिरंजीवम, चिरजीवी रहो सनातन काल तक। और ब्राह्मण पुत्र को क्या कहा, ब्राह्मण पुत्र को कहा मुनि पुत्रम ना जीवो, मुनि पुत्र को कहा मत जियो तो मर जाओ। और फिर भक्त को क्या कहा, ना जीवा जीवा ना मरोवा, ना जियो ना मरो। हा? और फिर हंटर को क्या कहा, जियो ना मरो, ना जियो ना मरो। और साधु को कहा जियो या मरो, दोनों को भक्त डिफरेंस है, एक को कहा जियो या मरो और एक को कहा ना जियो ना मरो। तो इन चारों में समझने वाली बात है, बहुत गुहितम ज्ञान। राजा पुत्रों कहा राजा पुत्रम चिरंजीवम, मतलब हे राजा के पुत्र तुम चिरंजीवी रहना, मरना मत। मर गए तो देह अंतर प्राप्ति के बाद बड़े कष्ट उठाओगे, क्योंकि तुमने राजा के अहंकार में स्त्री गामी हुए, मांसाहार का सेवन किया, शिकार किया, लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, इसलिए अगर तुम मर गए तो दुर्गति होने वाली है। इसलिए बच जाओ जी, चिरंजीवम, तुम जीते रहो भैया। ब्राह्मण पुत्र अभी नया नया है, 18 वर्ष का है, अभी उसने समान संसार देखा नहीं है। अगर कहीं ब्राह्मण ने संसार देख लिया, अजामिल की तरह इसी संसार में फंस जाएगा। इसलिए उसे क्या कहा, ना जीवा, तुम जियो मत, मर जाओ। इस ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हो, भजन करते हो अपने पिता के संग में, मर जाओ तुरंत, क्योंकि अगर तुम भजन नहीं करना सीखे, भक्त नहीं बन पाए और बूढ़े हो गए तो इस संसार तुम्हें छोड़ने नहीं देगा। और साधु को क्या कहा, जीवा या मरोवा, जियो या मरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम मरने के बाद भी भगवत धाम जाओगे और जीते जी भी मुक्त हो, भगवत धाम में हो, सदा भगवान की कथाओं में रहते हो। और एक शिकारी को कहा, न जीवा ना मरोवा, ना मरना ना जीना, क्यों, क्योंकि तुम जीते जी भी मरे हुए हो और मरने के बाद भी तुम्हें यमदूत जीने नहीं देंगे, बहुत बुरा हाल करेंगे। मांसाहार का सेवन करते हो, मदिरा पीते हो, शराब पीते हो, मांस खाते हो, सिगरेट पीते हो, इसलिए ना तुम मरो ना तुम जियो, ये उसको आशीर्वाद दिया। तो आप देखिए, अगर हम अपनी आत्मा को, देही को सही मायने में वहां पहुंचाना चाहते हैं जहां से वो आई है, तो हमें आज ही अपनी देही को समझना पड़ेगा, और इससे हमारे जीवन के बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अर्जुन परेशान था, सॉल्व ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन भगवान ने इस श्लोक में कहा, धीरस तत्र नाम मुह्यति, मोह मत करो, तुम बाण चलाओ, क्योंकि ये लोग जो सामने खड़े हैं एक देह अंतर प्राप्त करने वाले हैं। अब इसमें से कुछ हैं जो जिए या मरे, मरे समान है, जैसे धृतराष्ट्र जीते जी भी मर रहा था, मेरे पुत्र को कब गद्दी मिलेगी, और मरने के बाद भी उसने जीना नहीं था, क्योंकि उसकी दुर्गति होने वाली थी। और भीष्म पितामह भगवान कृष्ण के भक्त थे, जीवो या मरोवा, जीते या मरते, जीते जी भी वो भक्त थे और मरने के बाद भी उन्हें भगवत धाम मिलने वाला था। तो इसलिए अर्जुन डरो मत, चलाओ बाण, क्योंकि ये आत्मा मरने वाली नहीं है, ये भगवान कृष्ण ने वहां उपदेश दिया। तो आशा है आपको ये उपदेश समझ में आया होगा। निरंतर भगवान के नामों का जप करते रहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।